ओम शांति।
ओम शांति।
समय न कभी ठहरता है न कभी मुड़कर देखता है। समय बहता ही जाता है फिसल की रेत की तरह, और ये रेत अपने साथ बहुत कुछ बहा के ले जाता है। कुछ बदल जाता है और कुछ कभी नहीं बदलता है। तो हम बात कर रहे हैं परम पिता शिव परमात्मा द्वारा स्थापित महारुद्र महायज्ञ की। तो यज्ञ इतिहास, इतिहास है त्याग का, इतिहास है पवित्रता का, और यही इतिहास जब पुराना हो जाता है तो उसको पुराण कहा जाता है। तो हमारे प्राचीन देश में बहुत सारी पुराणों की कथाएं हैं, तो ये भी वही एक किस्सा है जो पुराणों में हम देखते हैं कि ऋषि मुनियों ने क्या किया, यज्ञ किया, और उस यज्ञ में क्या पड़े, विघ्न पड़े। तो इस महारुद्र यज्ञ में भी विघ्न पड़े, जैसे कि इतिहास में पुराणों में हम देखते हैं कि हर युग में उन्होंने दिखाया है कोई न कोई महापुरुष आया है। तो हमें भी पता है कि कल्प कल्प शिव बाबा आते हैं। तो अभी कोई धर्म स्थापक धर्मात्मा नहीं आई थी, तो कौन आया था, स्वयं उनका बाप। तो प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के मानवीय तन में शिव का अवतरण। तो ये बात कोई नई नहीं है, पुरानी ही है। ये झगड़ा कोई नया नहीं है, पुराना ही है पवित्रता का। कि जैसे स्थापना का कार्य अभी भी चल रहा है और उस समय भी था, लेकिन उस समय ब्रह्मा बाबा के लिए जैसे कि पेपर था। जब कराची में थे उधर भी पवित्रता के कारण झगड़े हुए, कोर्ट तक कचहरी तक जाना पड़ा, फिर पिकेटिंग हुआ। इसमें हर वर्ग की आत्माएं अपना अपना सहभाग दिखा रही थी कि जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, माताओं को तो ज्ञान अच्छा लगता है लेकिन पति पवित्रता की बात में सहयोग नहीं दे रहे हैं, तो वो चिढ़ रहे थे अंदर से। फिर धर्म सत्ता कि जो साधु सन्यासी गुरु गोसावी ये जो लोग थे उनके फॉलोअर्स इधर आ रहे थे, तो उन्होंने भी क्या किया, पिकेटिंग किया, संस्था के विरोध में क्या किया, पर्चे छपवाए, पैम्पलेट छपवाए, उसमें कुछ गलत गलत बातें लिख दी। फिर राज्य सत्ता या हम कहें कि अलग अलग पार्टियों के नेता है, उन्होंने भी क्या करना शुरू किया, इसमें सुर लगा दिया। तो ऐसे ही ये किस्सा है या बात है 1961 के हापुड़ में। तो वहाँ पे सीतू दादी जी थी, मनोहर दादी जी थी। तो ये किस्सा हो रहा था हापुड़ में, लेकिन इसका जो रिजल्ट है चारों तरफ दिखाई दे रहा था। तो दादी चंद्रमणि सुना रही है कि जब दादी अमृतसर में थी तो उन्होंने कहा कि जब अमृतसर में थी तो यह बात इंदिरा गांधी तक पहुंच चुकी थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ अलग ही इनकी गतिविधियां हैं। तो अपनी विद्यालय की कंप्लेंट उन तक पहुंची थी, तो उन्होंने सीआईडी को पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी सेवा केंद्र है उनको भेजा। तो एक डीएसपी आया तो उन्होंने कहा मुझे आपका कोर्स, आपसे कोर्स करना है। तो दादी ने कहा मैं तो कोर्स नहीं कराती, ये हम माता है ये आपका कोर्स कराएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनको एक टाइम दिया गया कि आप इस टाइम पर आना। पहले दिन तो आ गया, फिर दूसरे दिन अलग टाइम में आया। फिर उनको पूछा कि भाई आप समय पर क्यों नहीं आए, ये टाइम मुकर्रर है, आपको इसी टाइम में आना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है। फिर दूसरे दिन फिर अलग टाइम में आया। तो फिर दादी ने कहा कि देखो भाई हमारा यही मुकर्रर टाइम है, आपको इस टाइम में आना है। तो वो कहता है ये आया वो आया, बहाने दिया। तो फिर चौथा दिन हुआ तो दादी ने समझ लिया कि ये जिज्ञासु ठीक नहीं है। तो दादी ने कहा, देखो भाई कि अभी आपको बताया जाता है कि आपको इसी समय पर आना है। लेकिन दादी ने कहा कि उसको ये बात समझ में आ गई कि इनको मेरे ऊपर शक है। तो वो क्या कहता, क्या करता है, जैसे बुजुर्ग होते हैं छोटे बच्चे को हाथ लगाते, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे उसने किया। तो दादी बिल्कुल शक्ति रूप हो गई, अरे तुमने एक स्त्री को हाथ लगाया, मुझे हाथ लगाया, अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ। इस तन को तुमने हाथ लगाया जो शुभ परम पिता परमात्मा के आगे तन मन से मैं समर्पित हूँ, इस तन को तुमने हाथ लगाया, अभी मैं पुलिस को बुलाती हूँ। दादी ने पुलिस को फोन किया तो वो डर गया, उसने फिर हाथ जोड़े, नहीं मैं सच बताता हूँ सच बताता हूँ। तो फिर उसने बताया कि इंदिरा गांधी ने ही हमें भेजा है, आपका क्या कार्य चल रहा है, आप दिन भर क्या करते हो, कौन कौन यहाँ आता है, तो अब मैं आपकी सही सही रिपोर्ट करूँगा। माना हपुड़ का हंगामा हो रहा था हपुड़ में, लेकिन इसका अमृतसर तक उधर भी पुलिस और गवर्नमेंट उसकी क्या कर रही थी कि क्या चल रहा है, छानबीन हो रही थी संस्था की। तो फिर बाद में दादी को भी हपुड़ में भेजा गया। तो हपुड़ में 1961 में ये समय था शिवरात्रि का लगभग, तो मनोहर इंदिरा दादी शिवरात्रि के प्रोग्राम में ही थी। तो वहाँ पर जो लोग थे, वहाँ पे धार्मिक लोग भी थे, कौन से लोग थे, वो आर्य समाजी लोग थे। तो आर्य समाजी तो कट्टर थे ही, तो भाषण में दादी से कुछ माना वहाँ सतत झगड़ा होता रहता था। तो दादी ने कहा कि यहाँ के लोग तो जैसे अनाड़ी है हपुड़ के, ऐसे कहा। तो वो शब्द को उन्होंने पकड़ लिया। फिर दूसरी बात ये हुई कि एक वहाँ पर माता थी, रज्जू नाम की माता थी, तो उसका पति का और उस माता का झगड़ा होता था पवित्रता के कारण। तो फिर उस पति ने क्या किया, कंप्लेंट दे दिया पुलिस में कि मेरी पत्नी 16 साल की है और उसने क्या किया है, सारे जेवर आदि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में दे दिया है और वो भी उधर जाके बैठती है। तो गलत कंप्लेंट दे दी, जबकि वो माता वयोवृद्ध थी, ज्यादा आयु वाली नहीं तो बूढ़ी ही थी, लेकिन उसने एज लिखवाया 16 साल की। तो बात ये थी कि उनका झगड़ा होता था, उस बेचारी के पास 5 रुपए थे, वो चली गई दिल्ली, दिल्ली में जाके सेंटर में गई और बोलती है कि मुझे आप है ना बर्तन मारने के लिए रख लो। तो बहने भी देखती है, हाँ पति तो घर में नहीं रख रहा है, आई है तो उसको रख लेती है बर्तन मारने की सेवा में। तो फिर वो भी बात थी, तो वो आर्य समाजी लोग और विरोधक इकट्ठे होते हैं, वो भी पुलिस के पास जाते हैं। तो फिर पुलिस और ये मिलके 8-8 लोग बैठते हैं, विरोधक 8 और अपने संस्था के 8 लोग, और उसमें वहाँ पे रज्जू माता को बुलाया जाता है। तो वो अपना बयान देती है कि नहीं मैं तो अपनी मर्जी से आए हूँ, कोई जेवर आदि लेकर नहीं आई हूँ। तो फिर सबको दिखाई देता है तो सच बोल रही है। तो फिर उन 8 लोगों को ही बंद किया जाता है एक दिन के लिए जेल में। तो वो लोग और भड़क जाते हैं। तो फिर इसमें सब लोग मिल जाते हैं, एक तो घर गृहस्थ में रहने वाले जिनको पवित्रता पसंद नहीं है, फिर दूसरा धर्म सत्ता जिसको कहा जाए कि साधु सन्यासी, पुजारी पुरोहित, क्योंकि इनका तो धंधा जैसे कि चौपट हो रहा था कि उनके फॉलोअर्स इधर आ रहे थे, क्योंकि आज तक ये माताएं उनकी कथा कहानियां सुनते आ रही थी लेकिन उनको कुछ मजा नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ बिना किसी किताब पढ़े ही प्रैक्टिकल जीवन में कैसे जीना है, वो बातें उन माताओं को कन्याओं को अच्छी लग रही थी। तो उस कारण उन्होंने क्या किया, विद्यालय में आना शुरू किया। तो उन लोगों ने बहुत बहुत विरोध किया, पैम्पलेट छापे, तो उसमें क्या लिख दिया, ब्रह्मा कुमारी तो क्या है, पाखंडी है, ये दादा लेखराज है, इनकी साइकिल की पंचर की दुकान थी। फिर उन्होंने किसी माया देवी नामक महिला को मेरठ से भगाया, ऐसी कुछ कुछ बातें इतनी लिख दी, बाबा के बारे में भी लिख दी। और कोई सत्य की तो पहचान करने पहुंचता नहीं, बस वही पैम्पलेट पढ़ के लोग सच मानते थे। और कहीं भी ये सब तरफ चर्चाएं होने लगी कि ये संस्था अलग ही है। फिर और दूसरी बात कि लोग बोलते थे कि यहाँ पति पत्नी को भाई बहन बनाया जाता है। फिर दूसरी बात बोलते हैं कि यहाँ इनके चरित्र अच्छा नहीं है। अब दोनों बातें तो परस्पर विरोध है। एक तरफ बोल रहे हैं कि इनका चरित्र अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, और एक तरफ बोल रहे हैं कि पति पत्नी को भाई बहन बना देते, तो उनके बातों में कुछ दम भी नहीं था। फिर एक और कहने लगे कि ये तो ना किसी धर्म के, अलग धर्म के हैं। फिर कहते थे कि ये किसी धर्म के ही है नहीं। फिर कहने लगे इनको ना अमेरिका से पैसा आता है, ये अमेरिका से एक एजेंट है और इन धर्म भ्रष्ट करने के लिए आए हुए है, सफेद कपड़ा पहनते हैं क्रिश्चियन बनाने के लिए, इनको अमेरिका से पैसा आता है। तो फिर दूसरी बात बोलते थे कि ये तो चंदा भी नहीं मांगते, किसी से पैसा भी नहीं लेते। अगर इनको पैसा लेना ही है, अमेरिका से लेना है, तो यहाँ मिला हुआ क्यों नहीं ले रहे। तो वो भी बात क्या थी, परस्पर विरोधी थी। वो क्या लांछन लगा रहे उनको ही पता नहीं चल रहा था। तो ये सब बातें मीडिया के भी ध्यान में आ रही थी। दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां पर अपने बीके भाई बहनों ने सब बातें बताई कि देखो अगर हम झूठ है तो हमें सजा दीजिए, अगर हम झूठ नहीं है तो आप हमारे क्या करो, सहायता करो। तो मीडिया ने भी इसमें सहयोग दिया, बड़े बड़े अक्षरों में रोज न्यूज़पेपर में यज्ञ की क्या होने लगी, बिना किसी खर्चे के एडवर्टाइज हो रही थी, और पूरे भारत भर में नहीं तो भारत के बाहर भी इसका न्यूज आ रहा था। तो शिव बाबा अपना कार्य करा रहा था कि देखो वो दिन कि वहां जब नारा लगाया जा रहा था कि भगाओ इन ब्रह्मा कुमारियों को, और आज का दिन, कल पूरा दिन न्यूज में यही चल रहा था कि योगा दिवस है, तो मुख्य प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, उसके मेन गेस्ट कौन है, मोदी जी है, रामदेव बाबा है और सिस्टर शिवानी। पूरा कल कौन सा भी न्यूज चैनल खोलो डंका बज रहा है, स्पेशल आमंत्रण मिल रहा है। तो हापुड़ में भी हमें निमंत्रण से ही गए थे, बिना बुलावे से नहीं गए थे, हमें ऑफिशियली निमंत्रण मिला था। और जिस घर में हम सेंटर चल रहा था तो वो भी बहुत ही आध्यात्मिक थे, लेकिन बूढ़े थे पति पत्नी, तो उनको लोगों ने डरा दिया कि देखो भाई हम तो आपको मार देंगे, जला देंगे, तो बेचारे डर गए। फिर मकान चेंज करने की बात आ गई, तो प्रदर्शनकारी थे ना विरोधक, उन्होंने युक्ति चलाई, क्या किया, पहले तो दूध पानी बंद कर दिया, माना जहां भी हम परचेसिंग के लिए जाए तो वो लोग वहां टपक जाते थे, वो कुछ करने नहीं देते थे। फिर घर का जो मालिक है उसको भी डरा दिया, बूढ़ा तो बेचारा डर गया। फिर अभी नई जगह देखनी है, नई जगह भी देख ली, ऐसे व्यक्ति को ढूंढा कि जो खुद स्ट्रांग था, तो फिर उसके पास वो विरोधक पहुंच न सके। तो वहां तक जाए कैसे, तो उन लोगों ने युक्ति किया, एक ट्रक लेके आए, कहा कि इस ट्रक में आप सामान डालो, हम आपको वहां तक पहुंचा देंगे। तो बात तो कुछ गड़बड़ थी, दादियां थी वहां पर इतनी सीनियर, तो उन्होंने परख लिया, चंद्रमणि दादी थी, तो उन्होंने संदेशी को भेजा, जाओ बाबा को पूछ के आओ क्या करें, तो ये मकान छोड़ने से पहले, उधर जाने से पहले क्या करें। तो फिर संदेश, बाबा ने संदेश भेजा कि बिल्कुल नहीं, उस ट्रक के अंदर नहीं चढ़ना है, और जो निर्भय है वो आगे चले। तो दादी ने कहा, चंद्रमणि दादी ने कहा कि मैं बिल्कुल निर्भय होकर आगे आगे चलते गई, सब मेरे पीछे पीछे आने लगे। तो उन्होंने कहा इसी शांति का, शक्ति का प्रयोग मैंने किया कि जो उनके मन में चल रहा था कि अब हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सब उनको भूल गए। फिर सब दादी के पीछे पीछे चले गए। तो नए मकान के सामने पहुंचे तो उन लोगों ने पहले ही वहां ताला लगा के रखा था गेट पर ही कि ये आगे जाए नहीं। तो दादी वहां से मुड़ी सीधा पुलिस स्टेशन, फिर दादी पुलिस को लेके आई, पुलिस लोगों ने ताला वो खोला, फिर अंदर गए। रात के 12 बज चुके थे, माना इतनी सारी क्या होती गई, परीक्षा आती गई, एक तो खुद की देह से, फिर समाज से, फिर इन धार्मिक लोगों से, फिर राजसत्ता से, इतनी सारी क्या होती गई, समस्याएं आती गई। लेकिन वहां पर दादी कैसी अचल और अडोल रही, ये हम दादी जी के ही शब्दों में सुने तो अच्छा लगेगा। कि दादी ने कहा, हम सत्य है, दादी ने कहा कि हम सत्य है, निर्भय है, तो हमें डरना नहीं है। ऐसे देह से, देह के संबंधियों से, समाज वालों से, सरकार वालों से, सब से पेपर आएंगे, लेकिन हमें अधीर नहीं होना चाहिए, पीछे नहीं हटना है। पीछे हटे तो हार निश्चित है, कुछ भी हो जाए, हमें अपनी धारणाओं को नहीं छोड़ना है। अगर हम एक पेपर में हिल गए तो फेल हो गए, इसका मतलब है कि हमें भगवान के ऊपर पूरा पूरा निश्चय नहीं है, माया को हमने पूरी रीति से पहचाना ही नहीं है और उसके झुकाव में आ गए हैं। हम सत्य है, हम निर्भय है, बाबा हमारे साथ है, हमें क्यों फेल होना चाहिए। अगर हम अलौकिक है, लौकिक है ही नहीं, तो हमें डरना क्यों चाहिए। हम शिव शक्तियां हैं, हम पांडव हैं, हम सत्य हैं, हम अंदर से कोई पाप का संकल्प कर्म नहीं करते हैं, तो क्यों डरे। माना बाबा ने जो संदेश भेजा था कि जो निर्भय है वो आगे चले, तो उसके ऊपर दादी की क्या अंदर कमेंट्री चल रही थी, दादी अपने आप को क्या कमांड दे रही थी, वो सब इन शब्दों में है। हाँ मैं निर्भय हूँ, हाँ मैं निर्भय हूँ तो कैसे निर्भय हूँ, हाँ मैं मुझे डर नहीं है तो क्यों क्यों डर नहीं है, ये सब बातें यहाँ पर दादी ने बताया। कि जब हमारे अंदर पाप है ही नहीं तो डर किस लिए। आजकल पापी भी नहीं डरते हैं, डर तो पापियों को भी नहीं है, तो दुनिया में कितने पाप हो रहे हैं। वो अपने पापों से निर्भय है, वो समझते हैं हम हिंसा करके धर्म स्थापन कर रहे हैं, लेकिन दूसरे रूप से हमारी पवित्रता तो हमारे मन के अंदर है, बाहर तो हमारे जो ईश्वरीय कायदे हैं, मर्यादाएं हैं, नियम हैं, उसके अनुसार हम चल रहे हैं। हमारे नियम इतने कड़े हैं, परंतु क्या है, कायदे में फायदा है, फायदेमंद है, कायदे में फायदा है, लेकिन इनमें कोई छूट नहीं है, ढील नहीं है। तो ये कायदे सभी के लिए, छोटे बड़े नए पुराने, सभी के लिए क्या है, अनिवार्य है, सभी के लिए ये कायदे अनिवार्य है। पहले अपनी मर्यादाओं में ठीक रहो तो कोई भी आपके प्रति अंगुली नहीं उठाएगा। जब हम नियम मर्यादाओं में इतने पक्के रहेंगे तो हमें इस तरफ कोई देखेगा भी नहीं। अब ये हुआ बच्चों की का पार्ट, बच्चों के सामने समस्या आ रही थी, बाबा डायरेक्शन दे रहा था और बच्चे भी निर्भय होकर के चल रहे थे। अब बात है ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा ने तो ये सब कराची में इन सब बातों को फेस किया था, यज्ञ पिता और यज्ञ माता, तो मम्मा भी हापुड़ का चक्कर लगा के आई और बाबा के कमरे में बाबा को समाचार सुना रही थी। कि बाबा बड़े एक रस होके सुना रही थी स्टेप बाय स्टेप, बाबा ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और बाबा भी सुन रहे थे। तो बीच में वहां बैठे थे रमेश भाई जी, उन्होंने देखा ये रिपोर्टिंग चल रहा है। फिर उनका होने के बाद रमेश भाई जी को प्रश्न आया, उन्होंने फिर पूछा कि मम्मा इतना सब हो रहा था तो आपके मन में कोई हलचल नहीं हुई। तो मम्मा ने कहा मैं क्यों हलचल में आऊं, तो फिर इतना सब हो रहा था, अपने भाइयों को किसी के गले में सांप डाला जा रहा है, वो जो बलवंत भाई थे ना,
बलदेव
भाई जयपुर से, तो वो भी कहानी वंडरफुल है। देखो बाबा कैसे पहले ट्रेनिंग देता है एग्जाम होने वाली है तो पहले ट्रेनिंग भी पक्की पक्की देता है। तो वो बलदेव भाई एक बार मधुबन में आए थे, तो बाबा को तो पता था आगे क्या होने वाला है। तो वहाँ कुटिया के पास एक सांप निकला था, तो बाबा ने कहा बच्चे इधर आओ। अरे सांप देखते तो डर गए, तो बाबा ने कहा बच्चे एक टोकरी लाओ। ठीक है, वो भाग गए और तुरंत टोकरी लेके आए। तब तक बाबा उस सांप को सकाश देते रहे। बाबा ने बिल्कुल उस सांप को डेड कर दिया, जैसे कि उसको, हाँ, पूरा उसको ठंडा कर दिया। फिर टोकरी तो लेके आए खुशी खुशी, बाबा ने कहा अब बच्चे उसको उठा के टोकरी में डालो। वो तो और डर गए, हिम्मत नहीं हो रही है। एक तरफ महाकाल और एक तरफ वो सांप है। तो अभी वो तो डर गए, तो बाबा ने कहा बच्चे कौन कह रहा है। तो अब तो क्या करे, बाबा सामने है, तो फिर उठा के जल्दी से उसमें टोकरे में डाल दिया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब उसको उठाओ, सिर पर रखो और जंगल में छोड़ाओ बच्चे को। अभी ये भी बच्चा और ये भी बच्चा, देखो सांप को भी बाबा बच्चा कह रहा है और ये भी बच्चा है। तो हाँ, सांप वही नहीं था, वो भी बताए। तो ये ट्रेनिंग चल रहा था, पूर्व तैयारी चल रही थी, रिहर्सल चल रही थी। तो डरते डरते उन्होंने अपने सिर पर टोकरी रखी, जंगल में छोड़ के आए। तो क्या हो गए बलवंत भाई, बलदेव भाई ढीठ हो गए। और फिर जब वहां हापुड़ में गए, तो प्रदर्शनकारी जो सांप लाए थे उनमें भी इतनी हिम्मत थोड़ी न थी कि सांप को, जिंदा सांप को कोई पकड़े। उन्होंने तो पालतू सांप को लाया था, वो पालतू सांप था और वो लाके उनके गले में डाल दिया। लेकिन इनमें तो हिम्मत थी, उन्होंने वैसे ही सांप को निकाला और उनके ऊपर डाल दिया। तो वो प्रदर्शनकारी और ही डर गए और भाग गए। मना इतना बाबा क्या करता है, पहले से ट्रेनिंग दे देता है बच्चों को। अगर ट्रेनिंग में पक्के हैं तो फिर समय पर हार नहीं खा सकते। तो फिर हम कहाँ थे, मम्मा। तो हाँ, मम्मा समाचार सुना रही थी। तो बिल्कुल मम्मा ने फिर बताया रमेश भाई को, देखो कि जैसे कल्प पहले हुआ था, 5,000 साल पहले जो बात घटी थी वही बात है। और बाबा का भी यही उत्तर था कि नथिंग न्यू, जैसे यज्ञ की स्थापना हुई थी वैसी हो रही है। आपको खुश रहना है, बच्चे खुश रहो आप, चलो। बाबा का उत्तर तो ऐसा था। तो देखो हापुड़ का भी भाग्य, हाँ वो सीतू दादी का है।
अमृतसर तो पंजाब में, हापुड़ पंजाब में,
यूपी का,
यूपी में है? मेरा
तो उसमें फिर कई मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंची, हर राजनेताओं में भी इसमें भाग लिया, क्योंकि उस समय चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव थे। तो उस समय जैसे आम इशू होते हैं हर मोहल्ले के, किसी को बिजली नहीं मिलती है, किसी को पानी नहीं मिलता है, किसी को रास्ता नहीं है, ये सब इशू होते हैं। लेकिन इस समय हापुड़ में क्या था, हापुड़ में कि जो विधानसभा सदस्य जो जो सब थे लाइन में, क्या कौन से उम्मीदवार कहेंगे उसको, वो जो उम्मीदवार वहां पर थे कि जिन्होंने आवेदन दे रखा था हर पार्टी के, तो उनके सामने बस यही बात थी। हर एक को यही लगता था कि मैं इनको किस तरीके से परेशान कर सकता हूँ तो लोग और खुश हो जाए। तो वो लोग क्या करते थे, यूथ को आगे रखते थे, सेंटर के सामने यूथ को बिठा दिया, कि वो दिन भर चिल्लाते रहते थे, ब्रह्मा कुमारियों के विरोध में नारे करते, नारे देते रहते थे। माना हर तरफ से क्या हो रहा था, जोर शोर से विरोध ही विरोध हो रहा था। और बच्चे ऐसे थे कि फुल ट्रेनिंग वाले। जो उसमें हमारी जो सीतू दादी है उनकी भी बड़ी वंडरफुल कहानी है। वो पहली वाली, बाबा ने उनको कैसे तैयार किया था वो बताते हैं, कि उनको तो कोई ज्यादा बंधन नहीं था, वो घर से तो आ रही थी। लेकिन और जो दादियाँ थी, मनोहर दादी थी, उनको, वो तो छोटी छोटी कन्याएं थी, तो उनको ओम मंडली में आने नहीं दिया जाता था। एक वहां पर भाई था, वो मोहल्ले का, वो मारता था उनको और फिर घर में जाके उनके घर वालों को बताता कि देखो आज आपकी कन्या वहां गई थी करके। तो बहुत 7-8 कन्याओं को उसने कैद करवाया था। तो सीतु दादी को उसके प्रति बहुत ये था कि अभी क्रोध था। तो सीतु दादी क्या करती थी, खुद चली जाती थी और दूसरी जो बहनों थी उनको भी चिट्ठियां पहुंचाती थी। तो वो उस भाई ने देख लिया, तो वो भाई दरवाजे पे ही खड़ा रहा कि अब ये बाहर निकलेगी। और दादी ने भी देख लिया था कि वो बाहर है। तो उसने मन ही मन में दादी जी ने क्या कर लिया, पन कर लिया, आज तो ये मरेगा, इसकी मौत होगी या मेरी मौत होगी, पूरा पक्का कर लिया था अंदर से। फिर साथ में रखा था एक रुमाल में मिर्ची पाउडर सीतु दादी, वो तो छोटी थी ना उस समय, तो उन्होंने सोच लिया था मैं दरवाजा खोलूंगी वो मुझे मारेगा फिर मैं गिरूंगी। तो उन्होंने गमले के पास ही क्या कर रखा था, एक रुमाल में मिर्ची की पाउडर लगी थी। तो ऐसे ही हुआ, दादी ने दरवाजा खोला और उसने मारा, वो गिर पड़ी और उन्होंने वो रुमाल उठाया और उसने आंख में डाल दिया। फिर वो तो चिल्लाने लगा, अरे ये तो ब्रह्मा कुमारी वाले मेरे जादू करते हैं, मेरी आंख चली गई, मेरी आंख चली गई। वो भाग के, पता नहीं चला उसको कि ये मिर्ची की पाउडर है, उसने वो बात फैला दी। तब तक दादी ने मिर्ची पाउडर रास्ते का साफ कर दिया कि इनके तो जिन्होंने बच्चों को कैद करके रखा था वो भी डर गए कि अरे वो लोग तो जादू करते हैं, इसकी आंख चली गई। मतलब वो भी डर गया, वो भी बाजू हो गया। और जिनको कैद करवाया था वो कन्या के घर वाले भी डर गए, नहीं नहीं ये लोग तो जादू करने लगे हैं। तो उन्होंने भी कन्याओं को छुट्टी को, तो ऐसी हमारी शूर वीर हाँ दादियां थी, वीरांगनाएं थी, उन्होंने क्या किया, बाबा ने उनको पहले से ही ऐसा ट्रेनिंग दे रखा था कि जो हापुड़ में क्या कर रही थी अपना रिहर्सल कहो वो सब दिखा रहे थे। तो सीतु दादी भी थी और मनोहर दादी थी, शिवरात्रि का समय था और बिल्कुल वो जो ग्राउंड होता है गवर्नमेंट का, उस ग्राउंड पे प्रोग्राम चल रहा था। फिर बाद में जब हंगामा बढ़ता गया तब चंद्रमणि दादी को भेजा गया, जहाँ हंगामा है वहाँ चंद्रमणि दादी जगदीश भाई है ही, क्योंकि बाबा का बैकग्राउंड ही वही है, बैकग्राउंड म्यूजिक ही वही चाहिए शिव बाबा को। कौन सा तांडव नृत्य कब होगा शिव का जब यदा यदा ही धर्मस्य, मतलब चारों धर्म जो है मुख्य धर्म है, धर्मों की अति ग्लानी होती है, ये सब बैकग्राउंड म्यूजिक होगा ना तभी शिव बाबा आता है। तो इसमें भी क्या था, कल्याण था। तो वो समय और आज का समय तो हम देख रहे हैं, हमारे सामने है। तो ये त्याग का इतिहास हमने देखा, पवित्रता का इतिहास देखा, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें नया, हम कौन सा इतिहास रच सकते हैं? अभी तो स्थूल में तो हमें कोई युद्ध करना नहीं है, ना हमें मिर्ची पाउडर खरीदने जाना है, ना सांप को पकड़ने का ट्रेनिंग लेना है, तो हमें क्या करना है, हमें कौन सा हंगामा करना है, कौन से स्तर पर करना है जो इतिहास बन जाए। अभी स्थूल में तो कुछ बाकी रहा ही नहीं है ना, योग का वाइब्रेशन है। तो 14 साल की वो तपस्या हुई, वहां तो पुराणों में दिखाते हैं कि एक घोड़ा छोड़ा, यहाँ तो इतने सारे घोड़े हैं और सब सफेद ही सफेद है, व्हाइट व्हाइट। तो इन घोड़ों को क्या करना है, अपने आप को घोड़ा समझना है।
आप क्या सोचते
हैं? वही कि दुनिया में बोलते हैं कि मन एक घोड़ा है, तो
लव कुश
चाहिए। हाँ हाँ, तो शास्त्रों में वो भी उदाहरण है, बहुत अच्छा हुआ जो आपने याद दिलाया कि सिर्फ यज्ञ की यज्ञ में सिर्फ असुरों में ही विघ्न नहीं डाले, लेकिन ये जो थे ना शिव बाबा के लाल छोटे छोटे, जैसे कि हनुमान का भी बचपन देखा जाए तो बहुत नटखट था, क्या क्या किया, जन्मते ही सूरज को निकल खाने के लिए निकल पड़ा था। वैसे ही अभी नए नए बच्चे होते हैं छोटे छोटे बाबा के, तो वो भी ऐसे ही ज्ञान सूरज को हब करने के लिए निकलते हैं। तो उनको भी क्या हुआ, फिर उन्होंने बचपन में जो साधु सन्यासी तपस्या करते थे तो किसी का कमंडल उठा ले, किसी का कमंडल नदी में डाल दे, किसी की माला खींच ले, किसी की दाढ़ी खींच ले, तो ऐसे भी यहाँ होता है कभी कभी। जो पुराने हैं ना वो तो फिर बिगड़ जाते हैं, तो फिर नयों को क्या करना होता है, श्रापित नहीं होना है यहाँ पर, तो बड़े ही युक्ति से चलना पड़ेगा। तो ये जो छोटे छोटे हनुमान है या लव अंकुश है, लव अंकुश ने क्या कर दिया, लक्ष्मण हो, भरत हो, ना हनुमान हो, सबको बेहोश कर दिया, फिर श्री राम जी को आना पड़ा। तो यज्ञ में विघ्न कौन डालता है, सिर्फ आसुर ही नहीं डालते, तो ये छोटे छोटे बच्चे भी डालते हैं। तो हमें सिर्फ बालक ही नहीं बनना है, तो बालक और मालिकपन का दोनों का बैलेंस भी बाबा यहाँ पर सिखाते हैं। तो फिर वो दिखाया गया है कि शापित हो जाते हैं और उनको समय पर याद नहीं आता है, तो उसी समय फिर क्या होता है, वो जामवंत उसको याद दिलाता है हनुमान को कि देखो ये समंदर आप ही लांग सकते हो, ये शक्ति आप में ही है, मुझ में नहीं है, आप सिर्फ भूल चुके हो, लेकिन ये जो समंदर लांगना है इतना बड़ा, ये आपका ही काम, बस स्मृति और विस्मृति, सारे ज्ञान का राज क्या है, स्मृति और विस्मृति। जैसे ही स्मृति मिली तो हनुमान ने जंप की, और वो पुल बांधने वाले कौन थे, नील और नल, वो भी ऐसे ही शापित हुए थे, जैसे ही स्मृति मिली तो वो अपने काम फिर करने लगे। फिर लव अंकुश भी दिखाया गया है कि खुद राम जी को आना पड़ा उनको कंट्रोल करने के लिए। तो अभी हमारे सामने कौन सा हंगामा है, कौन सा हंगामा करना है, संस्कारों का, संस्कारों के खिलाफ। जैसे निर्भय भी बनना पड़ेगा कि छोटी छोटी बात में डरना नहीं होगा। बस बाबा ने एक शब्द कहा कि जो निर्भय है वो आगे चले, लेकिन वो एक शब्द से शिव बाबा ने स्मृति दिलाई और दादी उस शब्द को पकड़ के कैसे चली और कैसे विजय मिली। तो निर्भय है, सत्यता है, पवित्रता है, तो विजय हुई पड़ी। अच्छा, ओम शांति।